श्रृंखला में आठवें स्कंद के चौथे अध्याय पर आज चर्चा है, इसके एक श्लोक को दोहराइए। श्री शुक उवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमाः मुमुचुः कुसुमासारम् शंसन्तः कर्म तद्धरे। श्रीशुक उवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमाः मुमुचुः कुसुमासारम् शंसन्तः कर्म तद्धरे। श्रीशुक उवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमाः मुमुचुः कुसुमासारम् शंसन्तः कर्म तद्धरे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा तदा उस अवसर पर जब गजेंद्र का उद्धार हो गया, देव ऋषि गंधर्वः देवता ऋषि तथा गंधर्व ब्रह्म ईशान पुरोगमः ब्रह्मा तथा शिवजी इत्यादि ने मुमोचुः वर्षा की, कुसुम आसारम फूलों का आवरण, शंसंतः प्रशंसा करते हुए कर्म दिव्य कर्म तद उस गजेंद्र मोक्ष की। हरे भगवान का। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो सारे ऋषियों गंधर्वों तथा ब्रह्मा शिव इत्यादि देवताओं ने भगवान के इस कार्य की प्रशंसा की और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। तात्पर्य इस अध्याय से स्पष्ट है कि देवल ऋषि नारद मुनि तथा अगस्त्य मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी कभी किसी को शाप देते हैं, किंतु ऐसे महापुरुषों का शाप वास्तव में वरदान होता है। पिछले जन्म में घड़ियाल एक गंधर्व था तथा गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न थे। ये दोनों शापित हुए किंतु दोनों को लाभ मिला। इंद्रद्युम्न को हाथी के जन्म में मोक्ष मिला और वह वैकुंठ में भगवान का पार्षद बना तथा घड़ियाल को उसका गंधर्व पद पुनः मिल गया। हम प्रायः देखते हैं कि बड़े संत या भक्त का शाप शाप न रहकर वरदान होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरव वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कली भान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरौ मन्महाधना अन्निस्तारकमद्भाग्य असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुरा
हरे कृष्णा। तो चौथा अध्याय है जहां गजेंद्र का भगवत धाम गमन का वर्णन किया गया है। बहुत छोटा अध्याय लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय, कई शिक्षाओं को प्रदान करता है। पहले कुछ श्लोकों में कैसे भगवान ने उद्धार किया, पहले पांच श्लोकों में ये वर्णन है कि कैसे भगवान ने घड़ियाल का और गजेंद्र का उद्धार किया। फिर आगे के श्लोकों में 7 से लेकर 13 श्लोक तक इसमें वर्णन है कि कैसे गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में राजा थे लेकिन फिर हाथी का शरीर उन्हें प्राप्त हुआ। तो उनके पूर्व जन्म की कथा 13वें श्लोक तक कही गई है और 14वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक 26वें श्लोक तक इस कथा को सुनने का फल दिया गया है कि ये जो कथा हमने गजेंद्र की सुनी इसकी इसका फल श्रुति का फल क्या है या फल स्तुति क्या है इसको दिया गया है। तो ऐसे ये अध्याय है। प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी पहले 5 श्लोकों में वर्णन करते हैं कि कैसे, जैसे हम लोग इस श्लोक में भी पढ़ रहे हैं कि जब भगवान ने उद्धार कर दिया, पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल का सर काट दिया, गजेंद्र की रक्षा की, तो ये देखकर सारे देवता ऊपर से बहुत गुणगान करने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, बहुत सारे वाद्य बजने लगे। ये सारा वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। अर्थात देवता बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान की लीला को देखकर देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब भगवान ने जब उद्धार किया तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे ये जो घड़ियाल था दरअसल ये गंधर्व था, आगे कथा आएगी, लेकिन ये गंधर्व था और गंधर्व अपने कुछ स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा था और ऐसे समय में वहां देवल ऋषि भी स्नान कर रहे थे उस जल में, और इसको थोड़ा अहंकार हो गया, खेल खेल में जैसे अन्यों के साथ कर रहा था, देवल ऋषि का भी इसने पांव खींच दिया पानी में, जैसे गजेंद्र को खींचा, आदत बनी रही तो पहले देवल ऋषि को खींचा था, आगे चलकर गजेंद्र को खींच दिया, तो देवल ऋषि को खींच दिया तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह तुमने पानी में खींचा है, घड़ियाल का काम है, तुम घड़ियाल बन जाओ। तो फिर वो घड़ियाल बन गया, उसने क्षमा याचना की देवल ऋषि से, तो देवल ऋषि ने कहा ठीक है, जब भगवान गजेंद्र का उद्धार करेंगे तो तुम्हारा भी उद्धार होगा। तो यहां हम लोग देखते हैं कि भगवान ने दोनों का उद्धार किया, भगवान के दर्शन हुए, उसे पुनः गंधर्व रूप प्राप्त हुआ और इस प्रकार भगवान ने जब उद्धार कर दिया तो फिर गजेंद्र कौन है इसकी भी कथा आती है कि गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में राजा इंद्रदुम्न थे, दक्षिण भारत में एक स्थान पर कहा गया तामिल प्रदेश में, तो हो सकता है तमिल भाषा बोलने वाले स्थान पर हो, तो द्रविड़ देश या दक्षिण भारत में वो पांड्या राज्य के राजा थे। तो उस समय जब उन्होंने राज्य कर लिया फिर वो सब कुछ त्याग कर वन में चले गए, वन में तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए भगवान पर ध्यान कर रहे थे कि वहां अगस्त्य मुनि आए, और जब अगस्त्य ऋषि आए वहां पर तो उस समय इंद्रदुम्न महाराज ध्यान में थे तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं उनकी ओर, अगस्त्य ऋषि क्रोधित हो गए कि भक्त आए हैं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक से स्वागत नहीं किया, तो ये जड़ बुद्धि है और जड़ बुद्धि हाथी की होती है, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, शक्ति बहुत होती है लेकिन बुद्धि नहीं होती है, इसीलिए एक साधारण मनुष्य उसको वश में कर लेता है। आप देखते हैं कि हाथी को चलाने वाला महावत इतना पतला सा होता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसको हाथी जरा से जोर से फूंक मार देगा तो उड़ जाएगा, लेकिन वो उसको नियंत्रण कर लेता है, क्यों? क्योंकि हाथी को बुद्धि नहीं। तो जड़ बुद्धि वाले हाथी हो जाओ, ऐसा श्राप उनको दे दिया, तो फिर वो हाथी हो गए थे। अब प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, इस श्राप देने के प्रसंग में प्रभुपाद समझाते हैं कि ऋषि मुनियों का श्राप, पहले तो ऋषि मुनि क्रोधित होते हैं, हम लोग ये चीजें देखते हैं कई जगह, देखा ऐसा नहीं कि यहां पर, कई बार देख बड़े बड़े ऋषि देवता नारद मुनि इत्यादि वो लोग क्रोधित हो गए, बहुत बड़े बड़े ऋषि क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया। तो कुछ चीजें इस प्रसंग से हमें सीखनी चाहिए। पहली चीज, ऋषि मुनि क्रोधित क्यों होते हैं, उन्हें तो क्रोधित नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, वो श्राप क्यों देते हैं। तीसरी चीज कि जिसे श्राप मिले उसे कैसे स्वीकारना चाहिए, यह गजेंद्र की कथा में कहा गया। जब अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया गजेंद्र को तो गजेंद्र का क्या भाव था, क्या गजेंद्र एकदम विरोध करने लगा या क्या हुआ। तो इस श्राप देने के प्रसंग में ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए। तो पहली चीज कि ऋषि मुनियों को क्रोध क्यों आता है, जैसे जय विजय को भी श्राप दे दिया, क्रोध आ गया, वहां वर्णन है कि उनको रोक दिया तो उनको क्रोध आ गया। तो अरे ये कैसे ऋषि मुनि है, हम वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, चार कुमार हैं, पूर्ण विरक्त हैं, ब्रह्मा जी ने कहा विवाह करो, प्रजनन करो, उन्होंने ब्रह्मा जी को ही बुरा भला कह दिया, कह रहे आप समझते नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जैसे इतने बड़े पद पर है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पूर्ण विरक्त हैं, संसार से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन क्रोध कर देते हैं। यहां पर भी हम लोग देख रहे, देवल ऋषि ने क्रोध किया, अगस्त्य मुनि ने क्रोध किया, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है ये लोग,
नारद मुनि ने क्रोध किया, आगे हम लोग दसवें स्कंद में देखेंगे या कहीं भी बहुत जगह पे हम देख चुके हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए हैं जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने क्रोध कर दिया, श्राप दे दिया। हम लोग जब क्रोध करते हैं तो हमारे क्रोध का कारण क्या होता है? हमारे क्रोध का एक ही कारण होता है, जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा होती है तो हमें क्रोध आता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है हमारे क्रोध का। हम कुछ करना चाहते हैं जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति होती है, हमें प्रसन्नता आनंद मिलता है, जब उसमें कोई बाधा डालता है या उसमें किसी भी प्रकार से बाधा आती है हमें क्रोध आ जाता है, क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है। लेकिन साधुओं को तो कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है, फिर उन्हें क्यों क्रोध आता है? वो तो अपना जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीते, वो तो वैरागी जीवन है, हमको कुछ लेना देना नहीं। राजा के यहां भी जाते हैं, अगर राजा पूरा राज्य देते हैं वो त्याग देते हैं, राजा बहुत कुछ देते हैं वो नहीं लेते। तो जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं है वो क्रोध क्यों करते हैं? उनका क्रोध का कारण क्या है? तो उनका क्रोध का कारण है कृपा। प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्यों में, पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए उद्धरण को देते हुए, कि ये जो क्रोध होता है ये दरअसल कृपा होती है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि क्रोध करते हैं तो एक कृपा है। जैसे जब अगस्त्य मुनि ने गजेंद्र को श्राप दिया कि हाथी हो जाओ, तो कैसे उनकी कृपा थी? क्योंकि उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा भक्त है, प्रयास कर रहा है भगवान को पाने का, लेकिन ऐसे तपस्या करता रहेगा तो कई जन्म लग जाएंगे भगवान को प्राप्त करने में, इसीलिए इसको एक ही जन्म में भगवान प्राप्त हो जाए, उन्होंने श्राप दे दिया, हाथी बन जाओ तुरंत भगवान प्राप्त हो गए। देवल ऋषि ने हु नाम के जो गंधर्व को श्राप दिया, वैसे वो भी राजा थे, और देवल ऋषि ने जब श्राप दिया तो यही सोच के कि इसको तो लाखों जन्म लगेंगे, ये गंधर्व है, इतना भोगों में पड़ा हुआ है, स्त्रियों के साथ आनंद ले रहा है, लाखों जन्म लगेंगे इसको भगवान की प्राप्ति के लिए, श्राप दे दिया घड़ियाल बन जाओ, एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति। तो ये ऋषि मुनियों के क्रोध का कारण, तो ऋषि मुनियों के क्रोध का कारण कृपा या कभी कभी भगवान की योजना, जैसे जय विजय को उन्होंने क्रोध किया, श्राप दिया। दरअसल बाद में वो खुद क्षमा मांगते हैं चार कुमार भगवान से कि आप हमें जो दंड देना चाहें दे दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने ये कह दिया। भगवान कहते नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, मेरी इच्छा थी, ये मेरी इच्छा से हुआ है। तो वहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि जब ऐसे साधु कभी कभी क्रोध करते हैं तो ये भगवान की इच्छा है। जैसे परीक्षित महाराज को क्रोध कर दिया गया, मेरे पिता के गले में तुमने सांप डाल दिया, मरा हुआ, सात दिन के अंदर मर जा। जरा सी बात पर इतने बड़े राजा को, इतने महान भक्त को ये श्राप देना, ये भगवान की योजना। तो इसीलिए जो साधुओं का क्रोध होता है ये कृपा ही है, चाहे उनकी कृपा हो या भगवान की योजना हो, दोनों दृष्टि से कृपा है। इसलिए इसको ये मानना चाहिए कि साधुओं का जो क्रोध है वो केवल कृपा है। हम लोग देखते हैं नारद मुनि, आगे चलकर हम लोग दसवें स्कंद में पढ़ेंगे, नलकुंवर मणिग्रीव को श्राप देते हैं, चैतन्य चरितामृत में हम लोग देखते हैं कई स्थानों पर श्राप दिए गए, ये सब कृपा है। लेकिन एक भक्त को कैसे लेना चाहिए? गजेंद्र को जब श्राप मिला, यहां वर्णन है कि अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, चले गए, गजेंद्र ने कोई विरोध नहीं किया, इसको भगवान की योजना माना कि ये भगवान की योजना है। तो एक भक्त को जब हमें कोई क्रोध में श्राप देता है ऐसे महान व्यक्ति, तो हमें उसे भगवान की योजना मानना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि आचार्यों का या महान भक्तों का, ऋषि मुनियों का जो श्राप होता है वो हमारे लिए वरदान है, उसको वरदान मानना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा आती है उससे। चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है शिवानंद सेन का, देखिए कैसे हमें श्राप को स्वीकार करना चाहिए, ये हम इस उदाहरण से देखते हैं। जैसे गजेंद्र ने किया, शिवानंद सेन यात्रा लेकर जा रहे हैं, हर वर्ष वो बंगाल से भक्तों को जगन्नाथपुरी ले जाते थे, रथ यात्रा के लिए, और सारी व्यवस्था वही करते थे, उनको ले जाने की, उनके खाने पीने की, उनके रहने की, जाना आना सब। और ये सरल नहीं था उस समय, सारी सुविधा नहीं थी, कई स्थानों से गुजरना पड़ता था, वहां टैक्स देना पड़ता था, कई जगह तो टैक्स लेने वाले कुछ राजा के आदमी होते थे, कई जगह तो चोर लुटेरे होते थे जो टैक्स के अधिकारी बने हुए होते थे, बहुत संभालना पड़ता था। आजकल ऐसा नहीं है, भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, उस समय एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का कर अदा करना पड़ता था, कितने लोग जा रहे हैं क्या है सब। तो शिवानंद सेन सारी व्यवस्था करते थे। तो एक समय नित्यानंद प्रभु साथ में थे, अब ऐसे में एक स्थान पर वो जरा फंस गए जहां टैक्स वगैरह देना था, कर देना था, तो शिवानंद सेन उनसे बातचीत में, क्योंकि वो लोग परेशान बहुत करते थे, तो उसमें फंस गए। अब इधर सारे लोग पहुंचे, वहां कोई व्यवस्था नहीं, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ठीक से बैठने की व्यवस्था नहीं थी, पेड़ वगैरह नहीं थे, एक पेड़ था उसके नीचे नित्यानंद प्रभु को बिठाया। तो ये देखकर नित्यानंद प्रभु बड़े क्रोधित हो गए, भूख लग रही है और रहने का स्थान नहीं, धूप है, तो ऐसा वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज की, बहुत भूख लगी थी, मैं बड़े गुस्से में आ गए नित्यानंद प्रभु, और उन्होंने श्राप दे दिया कि शिवानंद सेन के सारे पुत्र मर जाएं। देखिए यात्रा की व्यवस्था करना भी कितना कठिन है ना, बहुत तकलीफ होती है, कभी कुछ नहीं मिला, कभी कुछ नहीं मिला, और इधर सीधे श्राप दे दिया पुत्र मर जाए। अब शिवानंद वहां जितने भक्त थे उसने घबरा गए, वहां नित्यानंद प्रभु का क्रोध देखकर किसी ने जाकर संदेश दिया शिवानंद सेन की पत्नी को, वो तो रोने लगी कि हाय है, क्योंकि किसने दिया है, कोई साधारण व्यक्ति ने तो नहीं दिया, शिवानंद सेन को जो श्राप मिला नित्यानंद प्रभु ने दिया, तो नित्यानंद प्रभु देंगे मतलब होना ही होना है, तो वो रोने लगी। अब जब शिवानंद सेन सब कुछ समाप्त कर आए, देखा पत्नी रो रही, तो शिवानंद सेन ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही, तो उसने बताया कि नित्यानंद प्रभु ने ऐसे ऐसे, उनको बड़ी भूख लगी थी, उनके लिए व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने श्राप दे दिया। तो वो कहने लगे कि अरे रोती क्यों हो, अपनी पत्नी को कहते रोती क्यों हो, ये सोचो कि हमारी वजह से कितना कष्ट हुआ नित्यानंद प्रभु को। तो ये शिवानंद सेन का भाव देखिए, कि जब उन्हें पता चला तो उन्होंने क्रोध नहीं किया कि अरे समझ में नहीं आता नित्यानंद प्रभु को, इतना मैं परेशान हो रहा था वहां पर टैक्स वालों के साथ, इतना उनको समझा रहा था, और सारी व्यवस्था मैं करता हूं, पैसा मैं देता हूं, इतना टेंशन लेता हूं, और फिर भी ये मुझे श्राप दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। शिवानंद सेन ने पत्नी से कब रोती क्यों, ये सोचो कि कितना कष्ट हमारी वजह से नित्यानंद प्रभु को हुआ, हमें तो क्षमा मांगनी चाहिए उनसे कि उनकी हमारी वजह से उनको कष्ट हुआ, पुत्र मर गए तो ठीक है, लेकिन वो मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि कैसे मेरी वजह से नित्यानंद प्रभु को कष्ट हो गया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सोच सकते ना आप लोग, आज का सिनेरियो सोचिए, आज की स्थिति सोचिए, अगर ये लीला आज के समय में हुई होती, भूल जाइए चैतन्य महाप्रभु के समय, तो शिवानंद सेन क्या कहते, सारी व्यवस्था वो पूरा, ऐसा नहीं था कि भक्तों को पैसा देना होता था, सब शिवानंद सेन करते थे, पूरी यात्रा का खर्चा, तो वो कह सकते सारी यात्रा का खर्चा मैं कर रहा हूं, ऊपर से चिंता मैं ले रहा हूं, मैं जाकर कर वालों से झगड़ा करता हूं, उनसे सब करवा रहा हूं, अगर एक बार जरा सा कुछ नहीं हुआ, खाने को नहीं मिला, थोड़ा सा लेट हो गया, रहने की व्यवस्था नहीं है, कौन सी बड़ी बात हो गई, यात्रा में तो होता है, संभालना चाहिए, इतना बड़ा श्राप दे दिया, बिल्कुल नहीं। शिवानंद सेन कहते ठीक है, ये तो हमारी गलती कि हमारी वजह से नित्यानंद प्रभु को, देखिए मतलब उनका भाव क्या था, उनका भाव ये नहीं था कि मैं सबको लेके जा रहा हूं यात्रा में, उनका भाव था मैं सबकी सेवा कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है कि क्योंकि यात्रा में व्यवस्था कर रहा हूं, एक भी भक्त को कष्ट नहीं होना चाहिए, अगर एक भी भक्त को कष्ट होता है ये मेरी गलती। तो ऐसे वो गए। अब उस समय फिर कुछ भक्तों ने देखा कि पास में कुछ एक ग्वाले का घर था, नित्यानंद प्रभु को कहा आप आकर यहां, थोड़ा सा उसमें छांव थी तो आप यहां बैठिए, नित्यानंद प्रभु बैठे। अब शिवानंद सेन आए, शिवानंद सेन ने कहा जाकर माफी मांगनी चाहिए मुझे नित्यानंद प्रभु से, तो वो आकर पूरा दंडवत प्रणाम किया, चरणों में गिर गए नित्यानंद प्रभु के, कि क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो स्वाभाविक है जब कोई आकर ऐसे क्षमा मांगते हैं तो क्या मिलता है, चलो ठीक है नित्यानंद भोगे, चलो कोई बात नहीं हो गई, कुछ छोड़ो ये सब चीजें, या ऐसे कोई तो बात, या फिर कुछ प्रसाद मिलना चाहिए नित्यानंद प्रभु, कुछ एक रसगुल्ला गुलाब जामुन कुछ दे देते कि ठीक है कोई बात नहीं, ये लो दंडवत कर रहे प्रणाम कर रहे। नित्यानंद प्रभु ने जोर से एक लात मारी शिवानंद सिंह को, वो जो चरणों में आकर पड़ा है क्षमा मांग रहा है, नित्यानंद प्रभु जोर से उसको एक लात मारते हैं। अब आप सोचिए, पहले कोई गलती नहीं, शिवानंद सेन को शाप मिल गया, चलो फिर भी शिवानंद सेन ने स्वीकार कर लिया कि है हमारी गलती है, फिर आकर क्षमा मांग रहे हैं, सामने गिरे पड़े हैं चरणों में, और क्या मिल रहा है, जोर से लात खाने को मिल रहा है। अब शिवानंद सेन क्या कहते हैं, अब तो कोई इतना तो कोई नहीं सहन कर पाएगा कि ठीक है सब हो गया, मैं क्षमा मांगने आया और आप मुझे इतनी जोर से लात मार रहे हैं। तो शिवानंद सेन को तो भड़कना चाहिए था, जाओ जो करना है कर लो, नहीं जाता यात्रा नहीं करता तुम्हारी व्यवस्था। शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे श्राप दिया और अब आपने मुझे ये जो अपने चरणों से मारा, लात मारी जोर से, मुझे ये पक्का विश्वास हो गया कि आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया, अन्यथा जब तक ये नहीं होगा आप अपने सेवक के रूप में किसी और ही बाहर वाले के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने मुझे अपना सेवक स्वीकार किया है इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, और आज ये करने से मेरा जन्म मेरा कुल मेरा परिवार मेरा सारा जीवन धन्य हो गया, आपने आज मुझे श्राप दिया और लात मारी जीवन धन्य हो गया। नित्यानंद प्रभु ने जब ये सुना तो फिर उन्होंने आलिंगन दिया शिवानंद सेन को। तब सोचिए नित्यानंद प्रभु अगर आलिंगन देंगे तो जीवन में और इससे ज्यादा आशीष क्या चाहिए, सबसे बड़ी चीज उनको मिल गई, क्यों, उनके भाव को देखकर कि इतना गलत किया, एक दृष्टि से बाहरी दृष्टि से नित्यानंद प्रभु ने गलत नहीं, तब के बाहरी दृष्टि से श्राप दे दिया लात मार रहे हैं, लेकिन उनका भाव आपने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया ये आपकी महानता है इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं मेरा जीवन धन्य हो गया, ये भाव चाहिए। तो यही भाव राजा इंद्रदुम्न का था जब उन्हें अगस्त्य मुनि श्राप देकर चले गए, तो उस समय उन्होंने बड़े प्रेम से उसको स्वीकारा और उसको बहुत आगे चलकर जैसे हम देखते हैं कि गजेंद्र के रूप में उनको भगवान के दर्शन हुए। तो इसलिए साधुओं का जो क्रोध होता है वो केवल कृपा है, कभी कभी तो श्राप नहीं भी देते हैं केवल क्रोध में देख लेते हैं, जैसे अभी हम लोग नवे स्कंद में पढ़ेंगे महाराज सगर की कथा, उनके 60,000 पुत्र वो यज्ञ का घोड़ा ढूंढ रहे हैं, यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया गया, वो ढूंढ रहे हैं, उन्होंने सारी पृथ्वी खोद डाली, सब नीचे गए तो वहां देखा भगवान कपिल तपस्या कर रहे हैं ध्यान मग्न है और पास में घोड़ा है, तो उन्होंने सोचा घोड़ा यहां है ये व्यक्ति यहां है मतलब इसी ने चुराया, तो सब चिल्लाने लगे यही चोर है यही चोर है। तो भगवान कपिल ने अपनी आंखें खोली और देखा कि ये राजा के पुत्र होकर इनको इतना बुद्धि नहीं है कि किसी ध्यान मग्न साधु या चलो ठीक है नहीं जानते भगवान के अवतार हैं कम से कम साधु कर रहे हैं उन पर ऐसा आरोप, तो केवल उन्होंने देख लिया, श्राप भी नहीं दिया कि जलकर भस्म हो जाओ, नहीं केवल देखा और उनके देखने मात्र से अग्नि से जलकर वो लोग भस्म हो गए। तो कैसे हुआ, देखने मात्र से कैसे होता है, हम सबके शरीर में अग्नि है, भगवान है, हम वैश्वानरो भूत्वा अग्नि के रूप में भगवान हम सबके शरीर में है, और जब उन्होंने देखा क्रोध में ये लोग इतनी भी बात नहीं समझते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो अग्नि के रूप में है वही वो इतनी तीव्र उन्होंने अग्नि कर दी कि उससे वो लोग जलकर भस्म हो गए। लेकिन आगे चलकर फिर गंगा का अवतरण हुआ कि गंगा इस पृथ्वी पर तभी आई जब सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को जलाया गया, क्योंकि उनके उद्धार का एक ही मार्ग बताया कि जब गंगा आएंगी गंगा का जल छिड़का जाएगा तब उद्धार होगा। तो कई आगे चलकर कई पीढ़ियां लगी और फिर भगीरथ महाराज गंगा को लेकर आए इस पृथ्वी पर। तो ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में हैं। तो इसीलिए पहली चीज हमें ये जाननी चाहिए कि साधु जो हमें क्रोध करते हैं, साधु उनका क्रोध क्यों करते हैं? साधु इंद्रिय तृप्ति की बाधा के लिए नहीं, साधु क्रोध करते हैं जब भगवान की सेवा में कोई बाधा आती है। प्रभुपाद इस बात को लिखते हैं जय विजय के प्रसंग में, तीसरे स्कंद में प्रभुपाद कहते हैं कि मुक्त अवस्था में भी व्यक्ति क्रोध करता है, क्योंकि ये लोग तो मुक्त थे जीवन, ये चारों कुमार। तो प्रभुपाद कहते हैं उस अवस्था में भी क्रोध होता है, लेकिन उस अवस्था में क्रोध तब होता है जब भगवान की सेवा में बाधा आती है। अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने पर कोई साधु क्रोध नहीं करता। तो इसीलिए साधुओं का क्रोध हमारे लिए कृपा है, इसको हमें समझना चाहिए। और इससे क्या होता है, जब साधु क्रोध करते हैं हमें जो श्राप दिया जाता है वो केवल वरदान में बदलता है, भले हम उस समय समझ नहीं पाए। जब हाथी बनने के लिए कहा गया इंद्रद्युम्न महाराज को, जब घड़ियाल बनने के लिए कहा गया गंधर्व को, हो सकता है वो नहीं समझ पाए, लेकिन अंततः इस श्राप से ये वरदान साबित होता है। नहीं तो गंधर्व के रूप में हुहू को पता नहीं कितने समय लगता शुद्ध होने के लिए, अभी बस एक ही जीवन में शुद्ध हो गए। तो इस तरह ये समझना चाहिए। और तीसरी चीज जो हम चर्चा कर रहे थे, किस भाव में हमें लेना चाहिए, जैसे शिवानंद सेन ने लिया, जैसे महाराज इंद्रद्युम्न ने लिया, भगवान की इच्छा, ये मेरे उद्धार के लिए है, इसीलिए उसको स्वीकार करना है। इस भाव में अगर हम करते हैं तो हमारा लाभ निश्चित होता है। तो ऐसे इंद्रद्युम्न महाराज के पूर्व जन्म की कथा को कहा गया कि किस प्रकार जीवन में, जब ऐसे हमें सीखना चाहिए कि जब जीवन में, भक्ति के जीवन में जब दुख आए हैं या ऐसी चीजें आए जो विरोधी हों, तो उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये जानना चाहिए कि इससे हमें कुछ ना कुछ लाभ निश्चित होगा। जैसे इंद्रद्युम्न महाराज के हृदय में अगस्त्य मुनि के लिए कोई अपराध की भावना नहीं थी, फिर भी ऐसा श्राप मिला, अर्थात भगवान की योजना है, इसको उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसे हमें मानना चाहिए। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया तो गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति प्रदान की उन्होंने। सारूप्य मुक्ति क्या है? सारूप्य मुक्ति का अर्थ होता है कि भगवान के समान ही, भगवान के धाम में भगवान के समान रूप को प्राप्त करना, सारूप्य मुक्ति है। भगवान के धाम में जा पहुंचना जब भगवान के समान रूप प्राप्त हो, तो सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। प्रभुपाद लिखते हैं बहुत सुंदर बात कि कैसे सारूप्य मुक्ति मिल गई उसको, क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया, भगवान ने जब पकड़ा बाहर निकालने के लिए, और अगर भगवान का स्पर्श मिला बस उसी से उसको सारूप्य मुक्ति मिल गई। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि देखिए, कहते भगवान का स्पर्श कितना महत्वपूर्ण है। अन्य स्थानों पर भी हम देखते हैं ना, ध्रुव महाराज को स्पर्श किया भगवान ने, ये गजेंद्र को पकड़कर निकाला, तो भगवान का स्पर्श कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। और तब प्रभुपाद कहते हैं अर्च विग्रह की सेवा के लिए कि जो भक्त अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं वे भी भगवान का स्पर्श करते हैं, वे भगवान का स्पर्श पाते हैं। तो जिस तरह गजेंद्र, प्रभुपाल लिखते हैं तात्पर्य में, भगवान का स्पर्श पाकर सारूप्य मुक्ति के योग्य हो गया, इसी तरह भक्त भी जो भगवान की सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा, भगवान का स्पर्श करते हैं, वे लोग भी सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, भगवान का स्पर्श पाकर शुद्ध हो जाते हैं। और फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं कि भगवान का स्पर्श पाना मात्र से, भगवान के विग्रह की सेवा से नहीं, अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की लीलाओं को कहते हैं, ये भी भगवान का स्पर्श होना है। तो अगर हम भगवान की सेवा करें तो फिर हम अधिकारी हो सकते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में वो प्रसिद्ध श्लोक को कहते हैं,
तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग।
वो कहते हैं कि कौन मुक्ति पद का दायभाग, दायभाग मतलब अधिकारी हो जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुक्ति पद का कोई अधिकारी हो, हम कह नहीं सकते कृष्ण को हमारा अधिकार है। लेकिन इस श्लोक में कहा गया मुक्ति पदे सदाय भाग, उसका अधिकारी हो जाता है। कैसे? सब स्थिति में भगवान की सेवा करे। तत्तेऽनुकम्पांसु समीक्षमाणः। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को किसी भी अवस्था में अपनी सेवा बंद नहीं करनी चाहिए। अगर विपरीत स्थितियों में भी हर स्थिति को भगवान की कृपा मानकर वो अपनी सेवा को बनाए रखता है तो प्रभुपाद कहते हैं वो अधिकारी हो जाता है मुक्ति का। जैसे गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति मिली, पांच प्रकार की मुक्तियां होती हैं, सारूप्य मुक्ति होती है, सालोक्य होती है, सारिष्टि होती है, सामीप्य होती है और एकत्व। तो वैसे एकत्वम को तो माना नहीं गया है मुक्ति भगवान के, लेकिन चार प्रकार की तो मुक्तियां होती हैं। तो सच्ची मुक्ति क्या है? सच्ची मुक्ति ये है कि हम बाकी अन्य चीजों को त्याग कर भगवान की सेवा में लगे, ये सच्ची मुक्ति है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं हर अवस्था में जो सेवा करता है भगवान की, चाहे कितना ही विरोध क्यों ना हो, भगवान की सेवा को नहीं त्यागता, मुक्ति का अधिकारी हो गया। कैसे? उदाहरण देते हैं कि एक बालक जिस प्रकार अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, पिता होते हैं उसकी स्वाभाविकता अगर वो पुत्र बना रहे बस, तो उसको कुछ नहीं करना है, पिता की संपत्ति उसको मिलती है। इसी तरह अगर हम भगवान की सेवा करते रहें बस, हर अवस्था में चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, अगर हम भगवान की सेवा करते रहेंगे तो निश्चित हम लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, सही मुक्ति को। प्रभुपद विस्तार से मुक्ति का वर्णन करते हैं तात्पर्य में, कि कई लोग सोचते हैं मुक्ति का अर्थ है भगवान में विलीन हो जाना, निर्विशेषवादी मुक्ति। वो कहते हैं वो मुक्ति नहीं है, क्योंकि अगर कोई चला भी जाता उस मुक्ति को प्राप्त भी कर लेता है, जैसे वे लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन फिर इस जगत में आकर उसी जगत की सेवा करने लगते हैं जिसको मिथ्या कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, अनाथालय खुलवाते हैं और पता नहीं क्या क्या ये सब कार्य करते हैं। क्यों? ये वो लोग करते हैं जिनको मुक्ति प्राप्त हुई लेकिन वहां पर आनंद नहीं आया, सेवा का आनंद नहीं था, फिर से वापस आकर इन्हीं कार्यों में लग गए, जिस जगत को मिथ्या कह रहे थे उसी में पड़ गए। तो अगर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इस शब्द को सही रूप में समझना है तो ये नहीं समझना है कि सब कुछ बेकार है, सब मिथ्या है, तो ये समझना है कि परम सत्य श्री कृष्ण है, इस जगत के आकर्षण, इस जगत का आनंद मिथ्या है। ये जगत मिथ्या नहीं है, इस जगत का आनंद मिथ्या है, इस जगत का आकर्षण मिथ्या है, इस जगत के संबंध मिथ्या है। असली संबंध कृष्ण से है, असली आनंद कृष्ण में है, असली आकर्षण सर्वाकर्षण श्री कृष्ण है। ये जगत मिथ्या का सही परिभाषा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसकी परिभाषा ये। और फिर जब इस जगत के आकर्षण, इस जगत का भोग, इस जगत का आनंद, इस जगत के संबंध, इस जगत की हर वस्तु सत्य नहीं है, तो फिर परम सत्य से जुड़ना ये ब्रह्म सत्यम है। भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है और उनसे जुड़ना ये ही एक सत्य है जीव में। जीव के अस्तित्व का एक ही सत्य है, हमारे जीवन का एक ही सत्य है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना, और वो होता है भक्ति के द्वारा। तो वो सच्ची मुक्ति नहीं है जहां ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करें, जैसे भागवत कहता है कि पतंति अधः, फिर से गिरना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? मुक्त होकर भी व्यक्ति को क्यों वापस आना पड़ता है? क्योंकि सेवा नहीं, दो कारणों से, एक सेवा नहीं है, दूसरा वे लोग अनादर करते हैं भगवान के चरण कमलों का, स्वीकार नहीं करते उनके रूप को, तो अनादर करते हैं और इस कारण से उन्हें फिर से इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो अब जब भगवान ने उद्धार कर दिया गजेंद्र का, अपने साथ उसको ले जा रहे हैं सारूप्य मुक्ति, जाने के पहले फलस्तुति दी जाती है, तो शिवदेव गोस्वामी भी फलस्तुति देते हैं इस अध्याय के अंत में, और भगवान स्वयं देते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है, जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने अब तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया, जिसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। तो वे बताते हैं, हे कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं, आप सबने सुना है, वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा का श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं, वे कलयुग के कलमश से अप्रभावित रहते हैं और कभी भी दुस्वप्न नहीं देखते, बुरे बुरे सपने नहीं आते। इसको वो फिर से आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें प्रातः काल बिस्तर से उठकर अपने दुस्वप्नों के कष्टों का प्रतिकार करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए, जैसे है वैसे ही यथारूप, इधर उधर नहीं। तो कहते हैं कि इसको पाठ करना चाहिए, और फिर वो बताते हैं कि यही इससे भी अधिक फलस्तुति भगवान ने दी। तो सबके सामने भगवान ने गजेंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि जो कोई भी इस कथा को सुनता है, इस स्थान का स्मरण करता है, इस त्रिकूट पर्वत का स्मरण करता है, कंदराओं का स्मरण करता है, तुम्हारा स्मरण करता है, मेरा स्मरण करता है, कौस्तुभ मणि का स्मरण करता है, श्रीवत्स चिन्ह का स्मरण कर, बड़े विस्तार से भगवान ने कहा, सारी चीजों को कहा कि जो भी स्मरण करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्णन उन्होंने किए, भगवान ने किस किस का स्मरण करते हैं, भक्ति का स्मरण करते हैं, ओंकार मंत्र का स्मरण करते हैं, नदियों का स्मरण करते हैं इत्यादि। फिर कहकर भगवान अंत में कहते हैं कि जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, ये भगवान कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए, जो लोग बिस्तर से उठकर रात्रि बीतने पर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उनके जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूं। भगवान ये बस वापस जाने से पहले वैकुंठ ले गए अपने साथ गजेंद्र को, तो जाने के पहले उन्होंने ये कहा कि केवल अगर कोई इन स्तुतियों को रोज पाठ करता है तो उसे मैं जीवन के अंत में वैकुंठ लोक प्रदान करता हूं। तो इस तरह भगवान फिर गरुड़ की पीठ पर आसन्न होकर अपने धाम वापस, उन्होंने जोर से शंख बजाया और फिर अपने धाम वापस चले गए। तो इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया। तो बहुत सारी शिक्षाओं को इस अध्याय से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमें साधुओं के क्रोध को समझना चाहिए, कैसे हमें उनके श्राप को वरदान मांगना चाहिए, मानना चाहिए, और कैसे हमारा भाव होना चाहिए कि हम उसको स्वीकार करें। साथ ही साथ सच्ची मुक्ति ये नहीं है कि हम केवल ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन हो जाएं, सच्ची मुक्ति सेवा में है। अगर हम हर स्थिति में बिना रुके भगवान की सेवा में लगे रहें तो फिर मुक्ति पद हमारे लिए अधिकार हो जाएगा, जैसे एक पुत्र का अधिकार होता है अपने पिता की संपत्ति पर। और इस तरह के स्तोत्रों को, इस तरह की स्तुतियों को अगर हम बारंबार दोहराते रहें तो केवल दोहराने से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। यस प्रभुजी।